श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 8। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम है तुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो भगवान यहाँ पे असुरों के विभिन्न प्रकार के निष्कर्षों के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को देख रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के आसुरिक विचारों की चर्चा की जाएगी। ये सारे विचार एक ही मत के असुरों के नहीं है, असुर में भी विभिन्न प्रकार के मत होते हैं और उनका वर्णन किया जाएगा। तो भगवान सबसे पहले उन दार्शनिकों के बारे में बता रहे हैं जिनका मतामत है कि केवल एक ही निराकार ब्रह्म है, एक ही आत्मा है। उनका कहना है कि जो जगत है वह असत्यम अर्थात ये गलतियों से भरा हुआ है। जैसे एक सीपी आप समझते होंगे जो समुद्र के पास में पाई जाती है, वो चमकती है, तो सीपी को अगर कोई चांदी से सोचे कि चांदी का वस्तु है तो ये एक भ्रम है। तो उनका कहने का अर्थ ये है कि जगत असत्य है, ये एक भ्रम मात्र है। और वो कहते हैं कि इस जगत की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई आधार नहीं है। जैसे आकाश पुष्प, आकाश में पुष्प होते नहीं हैं तो आकाश पुष्पों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसी प्रकार से जगत है ये वास्तविक रूप से है ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि ये जगत वह वस्तु नहीं है जिसके गुणों के बारे में कुछ गलत समझा जा रहा है, अपितु यह वास्तविक वस्तु है ही नहीं। उनके अनुसार ये सब कुछ स्वप्न मात्र है और इस जगत की कोई सत्ता है ही नहीं। वो कहते हैं कि ये इस जगत में कोई ईश्वर नहीं है। अद्भुत बात यह है कि भगवान कृष्ण जो ईश्वर स्वयं हैं, वही उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि ये लोग कहते हैं, असुर लोग कहते हैं कि इस जगत की सृष्टि करने के लिए, इसका पालन करने के लिए और इसका विनाश करने के लिए कोई ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जगत जो है यह है माया से उत्पन्न हुआ है, ये एक भ्रम मात्र है। और उनका ये दावा होता है कि अगर वाकई कोई परम सत्य भगवान होते तो वह एक भ्रामक जगत को क्यों रचते, ये मायामय जगत भगवान क्यों रचते। इसलिए इसका अर्थ ये है कि भगवान है ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसका अर्थ ये है कि जगत जो है वह मिथ्या है। लेकिन उनका एक और मत है, उनका ये मत है कि अंततो गत्वा केवल एक आत्मा है जिसमें कोई गुण नहीं है और जिसे किसी भी अन्य स्रोत से जाना नहीं जा सकता, और किसी ज्ञान की गलती से कुछ गलती करके वह अपने आप को अज्ञान के कारण दूसरे रूप में परिवर्तित करती है और वह आत्मा इस जगत के रूप में, व्यक्तिगत जीवों के रूप में और भगवान के रूप में परिलक्षित होती है। ये सब उनकी मनोकल्पना रहती है। अब इसको समझना ही मुश्किल है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों आत्मा उस अज्ञान से प्रभावित हो जाती है, वो एक आत्मा और किस प्रकार से विभाजित हो जाती है। इस सब को अगर प्रश्न किए जाए तो उत्तर नहीं है, वो मनोकल्पना है मात्र की। और जब कोई व्यक्ति अपने आत्मा के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है तो फिर उसके लिए कोई द्वैतता नहीं रह जाती, ना तो भगवान रह जाते हैं ना भौतिक जगत रह जाता है, बस केवल वो अकेला रह जाता है, एकत्व हो जाता है। और जब तक वह स्थिति को ऐसे प्राप्त नहीं करता है तब तक जो भी वह जगत में देख रहा है वह ऐसा है जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति हाथियों को देख रहा है, घोड़ों को देख रहा है, रथों को देख रहा है। लेकिन अगर कोई वास्तविक रूप से अपने स्वरूप को समझ लेता है तो वो ये सारी वस्तुएं वैसे ही समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ये जगत, भगवान, ये सब वैसे समाप्त हो जाते हैं, या फिर हम अपने जो जीव के रूप में धारणा करते हैं कि मैं एक जीवात्मा हूं, वो धारणा भी समाप्त हो जाती है, जैसे वो रथ और हाथी और घोड़े इत्यादि समाप्त हो जाते हैं, उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है जब हम नींद से बाहर आते हैं। तो उनके कहने का अर्थ है कि जब हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा तो ये सब भावना कि मैं जीव हूं और भगवान है और जगत है, ये सब समाप्त हो जाएगा और हम केवल एकत्व में स्थित रह जाएंगे, अकेले निराकार स्थिति में हो जाएंगे। अब इसका अर्थ तो समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए आत्म साक्षात्कार का मतलब ही है कि मुझे किसी व्यक्ति को साक्षात्कार होना चाहिए। तो अगर मेरी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी आत्म साक्षात्कार के बाद, तो अनुभव किसको होगा? तो ये आप देख सकते हैं कि ये आसुरिक भाव है, ये जगत को भ्रामक बोलते हैं, जगत को स्वप्न बोलते हैं। और अद्भुत बात है, प्रभुपाद जी एक टीका में बोलते हैं कि भले ही वे इस जगत को भ्रामक बोलते हैं, स्वप्नवत बोलते हैं, लेकिन इस स्वप्न को भोगने में उनकी बड़ी प्रवृत्ति रहती है। अगर स्वप्नवत है तो क्यों नहीं इसे निवृत्त हो जाते। तो ये है पहली लाइन का अर्थ, असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगदाहुर अनीश्वरम। अब उसके बाद भगवान बौद्ध दर्शन के बारे में बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो जगत है वह अपरस्पर संभूतम है, अर्थात ये थोड़ा समझने वाली बात है, जैसे एक स्त्री और पुरुष अगर संग करते हैं तो उनको पता भी नहीं होता है कि जो संतान है उसकी उत्पत्ति कैसे हो जाती है, लेकिन एक जो कुंभकार है जब वह कुंभ का निर्माण करता है, घड़ों का निर्माण करता है, तो उसे पता है कि वह घड़ों का निर्माण कैसे कर रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, और क्यों कर रहा है। उसे पता है कि वह घड़े का निर्माण क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। और जब स्त्री पुरुष का संग होता है तो उन्हें नहीं पता रहता है कि वो बच्चे का जन्म कैसे हो रहा है और क्यों के बारे में भी लोगों को प्राय पता नहीं रहता। तो उनका कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से बच्चे कभी कभी स्त्री और पुरुष के एक संग से ही उत्पन्न हो जाते हैं, या जैसे कि बिच्छू पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं, सिवद्जा कहा जाता है, उसी प्रकार से ये जो सृष्टि है ये अपने आप हो रही है, इसके पीछे किसी का उद्देश्य नहीं है और कोई सृष्टि करता नहीं है, ये इनका कहने का अर्थ है। तो ये अपरस्पर संभूतम का अर्थ है कोई जगत करता नहीं है जिसने किसी उद्देश्य से सृष्टि को बनाया है। जबकि हम सब भक्त लोग समझते हैं कि सृष्टि का उद्देश्य है कि जीवों को भोग की भी सुविधा प्राप्त हो, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, और इससे जीव भोग की सुविधा को भी प्राप्त कर सके और साथ साथ अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करके भगवत भक्ति प्राप्त करने की भगवत भक्ति भी प्राप्त कर सके। तो ये देख सकते हैं कि ये सारे विचार मनोकल्पना मात्र है। व्यक्ति को शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, कभी वो प्रश्न नहीं करता है कि वो इंद्रियां दी किस लिए गई हैं और किसने दी हैं, और इस प्रकार की धारणाओं से वो युक्त हो जाता है कि नहीं सब अपने आप हो रहा है, इसे कहते हैं बाय चांस हो रहा है। अब इसके बाद तीसरा जो शब्द है किमन्यत काम हेतुकम में, भगवान लोकायतक नाम के जो दार्शनिक हैं, जो चार्वाक मुनि के सिद्धांत का पालन करते हैं, उनकी फिलॉसफी, उनके दर्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस जगत में काम के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है, इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहिए, अपितु ये पूरा जगत स्त्री और पुरुष के बीच में जो काम संबंध है इसी के कारण चल रहा है, और यह है पूरा जगत में, पूरे जगत को चलाने का यही उद्देश्य मात्र है। हेतुकम का अर्थ है कारण। तो यानी कि ये जगत जो है उसका चलने का एकमात्र कारण है स्त्री और पुरुष का आकर्षण। इस संबंध में काम हेतुकम का एक अर्थ जैनियों में लिया जाता है, जैन धर्म के लोग कहते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति का कारण व्यक्ति कुछ भी मान सकता है, जो उसकी काम, जो उसकी इच्छा हो वह उसको अपनी बुद्धि की शक्ति के द्वारा उसको समझ सकता है, और जो वो सोचे बस वही जगत का सृष्टि का कारण है। तो इस प्रकार से तीन लोगों का वर्णन वो करते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम जो है ये निराकारवादियों के सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहा है जो कि आसुरिक विचार है। अपरस्पर संभूतम जो है ये बौद्धों का विचार प्रस्तुत कर रहा है। और किमन्य काम हेतुकम जो है ये लोकायतक या चार्वाक मुनि का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा जो कह रहे हैं कि अंततोगत्व आत्मा उतना कुछ है नहीं, केवल शरीर है और शरीर को भोगो। अब जब शरीर खत्म हो जाएगा भस्मी भूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत, जब तक सब शरीर भस्मीभूत हो जाएगा तो कौन किसको देख रहा है। अगर तुम्हें ऋण भी लेना पड़े या चोरी भी करनी पड़े तो घी खाओ। तो इस प्रकार के दार्शनिक हैं और ये सभी असुरिक प्रवृत्तियों से युक्त हैं। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को देखते हैं। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है। ये अब आप समझ रहे हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम को प्रभुपाद समझा रहे हैं। इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे कोई ईश्वर का हाथ है। तो ये असत्यम का अर्थ है, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जगत मिथ्या है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वास्तविक रूप से है नहीं, एक स्वप्न मात्र है। और जगदाहुर अनीश्वरम मतलब इसके पीछे कोई ईश्वर नहीं है जिसने इसको बनाया हो। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। वो ये जैसे हम भगवद गीता में तो पहली बात ही समझा जाती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन इस प्रकार का भेद ये असुर लोग नहीं समझते हैं और ना वे समझते हैं कि इस शरीर को चलाने वाला परमात्मा है। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। तो इस भ्रम के बारे में बात कर दी गई थी कि जैसे कोई स्वप्न देखता है तो उस प्रकार से लोग बाग सोचते हैं कि जगत भी एक स्वप्न मात्र है, भ्रम के समान है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। ये बात मैंने समझाई थी कि एक वो कहते हैं कि एक आत्मा है और वह अज्ञान के कारण जगत के रूप में, जीवों के रूप में और भगवान के रूप में परिणित हुई है। ये उनका मानना है इस प्रकार से। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर ये कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। इसी बात को मैं बोल रहा था कि एक तरफ तो कहते हैं कि जगत स्वप्न की मात्र जैसा है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई खास इसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इस जगत को भोगने की उनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो ये कौन सी बुद्धिमानी है? या तो आप ये मत कहिए कि जगत स्वप्न है, और या फिर ये मत, या फिर स्वप्न को भोगने के पीछे मत भागिए। अतएव वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह ये संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ। प्रभुपाद अब अपरस्पर संभूतम को बता रहे हैं, ये बौद्ध धर्म की दर्शन को समझाता है। यानी ये संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है और उसका कोई उसका उद्देश्य नहीं है। उनके लिए पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया है, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कहने का अर्थ है कि इन लोगों का ये मानना है कि पदार्थ से जीव की उत्पत्ति हो गई है, जीवात्मा की उत्पत्ति हो गई है, इसमें भगवान नहीं है और आत्मा का कोई संयोग नहीं है। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने से ही स्वेद जल तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह है सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। तो ये सिद्धांत तो आजकल के डार्विन वाले लोग भी बोलते हैं कि वस्तुतः आत्मा जैसी कुछ भी नहीं है, खैर वो आत्मा के बारे में जानते ही नहीं है, और सब कुछ केमिकल के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर इस प्रकार का दर्शन की हम स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में नैतिक मूल्यों का कोई मतलब नहीं रह जाता, और इसी कारण से पूरे समाज में आसुरिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है, क्योंकि इसी प्रकार की शिक्षा बच्चों को बचपन से दी जाती है कि सब कुछ तो केमिकल से आया है, जबकि वस्तुतः जीवन का स्रोत जीवन है और वो परम जीवन है भगवान श्री कृष्ण। अतएव प्रकृति ही संसार के कारण स्वरूप है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। तो यानी प्रकृति जो कि जड़ है वही इस सृष्टि का निर्माण कर रही है, ऐसा वो सोचते हैं। वे भगवद गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते, मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। और एक अद्भुत बात है कि हम जगत में देखते भी हैं कि कोई अगर मृत वस्तु है, कोई जड़ वस्तु है, तो अपने आप क्रियाशील नहीं होती है जब तक कोई जीवित व्यक्ति उसे संपर्क न करे। उसी प्रकार से ये भौतिक प्रकृति भगवान के आदेश के बिना नहीं चलती, और भगवान इसको स्पष्ट रूप से बोलते भी हैं, फिर भी लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रकृति अपने आप चल रही है और उसको चलाने वाले भगवान नहीं। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। लाइन लास्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। बात क्यों महत्वपूर्ण है? जो असुर हैं वो कहते हैं कि कोई भी, पहली बात तो शास्त्र मानते नहीं है, और अगर वो कदाचित शास्त्र को मानते भी हैं तो भी वो कहते हैं कि शास्त्र की जो भी व्याख्या कोई कैसे भी करे वो सब एक बराबर है। वो ये परंपरा में ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, और इसी कारण से आप बहुत सारे मतामत देखते हैं। कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता है वो भगवान है, तुम जिसको भी मानो भगवान है, हम सभी भगवान हैं। ये सारी धारणाओं का शास्त्र में कोई आधार है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे असुर लोग बोलते हैं कि हम जो व्यक्ति जिसको माने जैसा माने वही श्रेष्ठ है। तो ये आसुरिक विचार है। जैसे भी हम सोचते हैं कि मैं जो सोचता हूँ सब कुछ ठीक है, ये गलत है, क्योंकि हम अपने ही बारे में नहीं जानते। जो व्यक्ति अपने को ही नहीं जानता तो उसके विचारों की क्या महत्व है। इसीलिए दैव स्वभाव यही है कि व्यक्ति शास्त्रों का आधार लेकर शास्त्र के अनुसार बोले, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करे। तो आज हमने तीनों इन दर्शनों के बारे में चर्चा किया, बौद्ध दर्शन के बारे में, जैन दर्शन के बारे में, और ये जो मायावादी लोग हैं उनके दर्शन के बारे में। और इनको भगवान असुर ही बोल रहे हैं, क्योंकि यह शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं, वैदिक शास्त्रों को नहीं मानते हैं।